ladies and gentlemen, is with some mixed emotions that we are performing for you this evening on the last day of our festival tour in Gujarat.
तो सज्जन और सन्नारी, हमारा आज अंतिम दिन है इस सूरत की गुजरात की टूर में और हमें काफी प्रतिभाव अच्छे और प्रतिभाव मिले हैं, हमें आपकी अच्छी लागणी मिली है.
I say mixed emotions because of course we're very happy to present this great event for your pleasure.
जो मिश्रित लागणी हमको मिली है वो ये है कि हम बहुत खुश हैं आपके सामने ये प्रोग्राम प्रस्तुत करते हुए.
To give you the opportunity to see devotees from 14 different countries in the West fully embracing your spiritual culture.
तो आपने देखा कि 14 देशों से आए हुए भक्त लोग जो आपके ये जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, उससे पूरे मिले हुए हैं, उनसे घुल मिल गए हैं.
At the same time, we're sad.
और इसी समय हम थोड़े दुखी भी हैं.
Because this is the last festival of the tour.
क्योंकि ये हमारी जो यात्रा है, उसका अंतिम उत्सव है आज.
We've been here in Gujarat for about a month and a half now, and we've performed this festival in most of the major cities of the state.
हम गुजरात में डेढ़ महीने से हैं और हमने गुजरात के काफी मुख्य जो शहर है उसमें ये प्रोग्राम किया है.
And tomorrow we leave for Maharashtra.
और कल हम महाराष्ट्र के लिए यहाँ से जाएंगे.
So I can tell you that from the depths of our heart, we're very sad to leave Gujarat.
तो हम हमारे हृदय से कहते हैं, हमारे हृदय की ऊंडाई से कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं गुजरात छोड़ने में.
Because the heart, in the heart of every Gujarati, is Bhagavan Shri Krishna.
क्योंकि गुजराती के प्रत्येक गुजराती के हृदय में भगवान श्री कृष्ण है.
Yes, he is your Ishta Deva.
और श्री कृष्ण आपके इष्ट देव है.
And also our spiritual master, Srila Prabhupada, he came to Surat 44 years ago with 25 Western devotees as well.
और हमारे आध्यात्मिक गुरु महर्षि प्रभुपाद 44 साल पहले ये सूरत में आए थे उनके 25 विदेशी शिष्यों को लेकर.
And Prabhupada made a comment during his visit here that Surat is a city of Krishna's devotees.
और श्रील प्रभुपाद ने कमेंट किया था कि सूरत भक्तों का शहर है.
Everyone in Surat is a Krishna bhakta.
सूरत में रहने वाले सभी कृष्ण भक्त हैं.
So, in one sense, we feel like we're leaving home because we also accept Krishna as our Ishtadev, although we come from America, France, Germany, and Australia. We've given up that life to embrace the life of Krishna consciousness.
और हमको ये जगह हमारे घर जैसी लगती है क्योंकि हम लोग भी कृष्ण भक्त हैं और हम इतने शहर से आए हैं, इतने अलग अलग देशों से आए हैं, फिर भी हमें यहाँ अपने घर जैसा लगता है.
This Krishna conscious movement is based on the authority of the Bhagavad Gita.
Krishna Bhavanamrut Andolan ka aadhar hai Srimad Bhagavad Gita.
Spiritual life is not something that one can just make up by oneself, some whimsical idea I have about spiritual life. Spiritual life, real religion comes from God.
आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है कि हम अपने मन माने ढंग से कर दें या जो भी जैसे चाहे वैसे कर सकता है, ऐसा नहीं है. आध्यात्मिक जीवन आता है शास्त्रों से, वैदिक शास्त्रों से.
Actually, there is a verse in scripture, "Dharmantu sakshat bhagavat panitam." But for the Lord, no one can create a system of religion.
तो शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति ये सृष्टि का सर्जन नहीं कर सकते.
Only the Lord can introduce a system of religion in human society.
और भगवान ही ये समाज में धर्म की स्थापना कर सकते हैं.
So from time to time, the Supreme Lord comes to the material world, specifically he comes to this earth planet, and he gives us dharma. He teaches us what is Sanatan Dharma, or the eternal religion of service to God.
और भगवान समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं और हमें धर्म के बारे में सिखाते हैं. वो सिखाते हैं हमें सनातन धर्म के बारे में.
Of course, one might be surprised that God would even come to this world.
तो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा कि भगवान यहाँ ये जगत में कैसे आते हैं?
Because what is this world made of?
क्योंकि ये जगत किसका बना हुआ है?
It's made up of souls who have rejected God.
क्योंकि ये जो जगत है वो आत्मा उन आत्माओं का बना हुआ है जिन्होंने भगवान का त्याग कर दिया है.
Everyone in this material creation has willingly left the supreme abode, Vaikuntha, to come to this material world.
तो ये जगत में भौतिक जगत में जो भी लोग रहते हैं उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से अपना वैकुंठ धाम छोड़ दिया है. भगवान का वैकुंठ धाम छोड़ के यहाँ पर आए हैं और यहाँ रह रहे हैं.
In his Prema Vivarta, Jagadananda Pandit, he uses the word Bahirmukha. Bahirmukha means we've turned our face from God.
तो प्रेम विवर्तन में जगदानंद पंडित ने कहा है कि हम लोगों ने हमारा जो मुख है वो भगवान की ओर से मोड़ दिया है.
It's a very nice analogy.
ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं.
All of us have experienced if you're speaking with someone directly and you just turn your face, that's very rude, that's an insult.
आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं और बात करते करते अचानक आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो ये वो व्यक्ति को बहुत बड़ा इंसल्ट होगा, उनका अपमान होगा.
I remember my mother when I was a young boy, she used to chastise me. She said, "You look at me, boy, when I'm speaking to you. You look at me when I'm speaking to you."
जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे सजा करती थी, मुझे चिल्ला डांटती थी कि जब तुम मेरे साथ बात करो तो मेरे सामने देख के बात करो. जब भी तुम मेरे साथ बात करो मेरे सामने देख के बात करो.
So we were in a loving relationship with Krishna, but somehow or other, due to our foolishness, Bahirmukh, we turned our face and we turned our back on God, and we came to the world of ignorance, the world of darkness, the material world.
तो हम भगवान के सन्मुख बैठे थे, हम भगवान से मित्रता थी हमारी, लेकिन कोई भी कारण से हमने हमारा मुंह भगवान से मोड़ लिया और हम ये जगत में आए. ये जगत अज्ञान से भरपूर है.
To greater or lesser degrees, we have all rejected Krishna.
ज्यादा और कम या कम मात्रा में हम सभी ने भगवान को त्याग दिया है.
Those who have rejected Krishna to the greater degree, they are the asuras. And those who have rejected Krishna, not so much, they still have some affection, they are the pious.
तो जिन्होंने भगवान को ज्यादा मात्रा में छोड़ दिया है वो असुर कहलाता है, लेकिन जिन्होंने कम मात्रा में भगवान का त्याग किया, दर छोड़ा है भगवान को, वो फिर भी पुण्यशाली है.
The Padma Purana states that in this material creation there are two classes of men, the divine men, the pious men, and the impious men.
तो पद्म पुराण में वर्णन है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, आदमी मनुष्य होते हैं. एक तो डिवाइन दिव्य मनुष्य होते हैं और दूसरे होते हैं पापी.
But it's to be understood everyone in the material world to a greater or lesser degree has rejected Krishna to come to this world of birth and death.
पर ये जगत में सभी लोग कम या ज्यादा मात्रा में उन्होंने भगवान को त्याग दिया है, वैकुंठ जगत को त्याग कर ये भौतिक जगत में आए हैं.
But Shastra also states that although we have forgotten God, God has never forgotten us, even for one moment.
लेकिन शास्त्र में कहते हैं कि हमने हालांकि हमने भगवान को भूल हम भगवान को भूल गए हैं, लेकिन भगवान एक क्षण के लिए भी हमको नहीं भूले हैं.
So although we have forgotten him, we have rejected him, he's so kind that even though he's been insulted, he still comes to this material world, millennium after millennium after millennium, to bring us home, his children, back to the spiritual sky.
हालांकि हमने भगवान का त्याग करके भगवान का अपमान किया है, फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि वो एक युग के बाद दूसरे युग में, एक के बाद दूसरे युग में वो यहाँ अवतार करते हैं दया से और हमारा उद्धार करते हैं और हमको भगवत धाम ले जाते हैं.
He's so kind.
वो बहुत ही दयालु है.
Chanaka Pandit, who wrote the Nichi Shastra, he says that one should not travel to a place where there is not clean water.
तो चाणक्य पंडित जिन्होंने नीति शास्त्र लिखा है उन्होंने कहा है कि जहाँ शुद्ध पानी नहीं मिलता है वहाँ वहाँ ब्राह्मण वहाँ जाते नहीं है.
One should not travel to a place where there is not clean water.
तो व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए जहां शुद्ध पानी नहीं हो.
Where there's not a good doctor.
जहां अच्छा डॉक्टर नहीं हो, तबीब नहीं हो.
Where there's not a pious king.
जहां अच्छा पुण्यशाली राजा नहीं हो.
Or where people don't like you.
और वहीं जगह नहीं जाना चाहिए जहां लोग आपको पसंद नहीं करते हो.
It's very practical advice.
ये बहुत ही व्यावहारिक सलाह है.
Right? You want to go on vacation, so you want to go to a place where there's clean water. Otherwise, you may get dysentery.
हाँ, तो आप वेकेशन में कहीं घूमने जाएंगे तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहां आपको शुद्ध पानी मिलेगा, नहीं तो आपको डिसेंट्री मतलब जुलाब हो जाएगा.
And you want to go to a place that has good doctors, good medicine, because if you get sick, you want to be cured.
और आप
vacation.
और आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां आपको कम से कम डॉक्टर मिलने चाहिए, दवाई मिलने चाहिए, नहीं तो आप बीमार होंगे तो आप क्या करेंगे.
And you want to go to a land where there is good government, pious king.
और आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे कि जहां जो राजा है वो अच्छा होना चाहिए, जहां की जो सरकार है वो अच्छी होनी चाहिए, पुण्यशाली होनी चाहिए.
If you go to some impious country, they may throw you in jail.
अगर आप कोई अपवित्र पापी जगह पर जाएंगे तो वो आपको जेल में डाल देंगे.
But Chanaka Pandit concludes, don't go to a place where you're not respected, where people don't like you. That would be foolish.
लेकिन चाणक्य पंडित कहते हैं कि आप वो स्थान पर नहीं जाइए जहां आपको लोग पसंद नहीं करते हैं.
So if we use this logic of Niti Shastra, it's quite amazing that God would come here because everyone has rejected him. They've left his loving service in the spiritual world and they've come to the material world. So why should God come to a place where people don't respect him?
तो हमने जो अभी ये बताया आपको एनालॉजी उदाहरण दिया कि ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, फिर भी भगवान जो है वो हमारे पास आते हैं, हालांकि हम भगवान को नहीं चाहते हैं, हमने भगवान को तरछोड़ दिया है, फिर भी भगवान हमारे यहाँ आते हैं.
Why would he come?
क्यों वो आते हैं?
So in his Bhagavad Gita, to deal with those doubts, Krishna explains very clearly why he comes to the material world.
तो ये हमारा जो शंका है कि भगवान क्यों हम ऐसी जगह आते हैं जहाँ चाणक्य पंडित ने ना बोला ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, तो वो डाउट हमारी जो शंका है उसको स्पष्ट करने के लिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं.
A very famous verse.
बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है.
Fourth chapter, text number 8.
चौथे अध्याय का आठवां श्लोक.
Paritranaya sadunam vinashaya cha duskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Krishna says to deliver the pious.
Krishna कहते हैं कि पुण्यशाली को उद्धार करने के लिए.
To annihilate the miscreants.
और जो दुष्कृति है, दुष्ट है, उनका नाश करने के लिए.
As well as to re-establish the principles of religion.
और धर्म के सिद्धांत की पुनर्स्थापना करने के लिए.
I myself appear millennium after millennium.
मैं अपने आप एक युग के बाद दूसरे युग में, एक के बाद दूसरे युग में आता हूँ.
So this is why Krishna comes to the material world, specifically the earth planet and specifically India.
तो यही कारण है भगवान आते हैं ये जगत में, विशेष करके ये पृथ्वी पर, और उसमें भी ज्यादातर विशेष करके भारत देश में.
These particular three reasons.
तो ये तीन कारण की वजह से भगवान आते हैं.
But our spiritual master Srila Prabhupada has stated that actually the main reason Krishna comes is to deliver his devotees.
तो हमारे आध्यात्मिक गुरु महाशील प्रभुपाद कहते हैं कि जो मुख्य कारण है भगवान का यहाँ आने का, वो कारण है कि भक्तों को दर्शन करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए.
Because there's no need for the Lord to appear personally to fulfill the other two reasons.
क्योंकि भगवान को और जो दो कारण हैं उसको पूर्ण करने के लिए ये भौतिक जगत में आने का जरूरत नहीं है.
Krishna doesn't have to appear personally to kill the asuras.
Krishna को अपने आप स्वयं आने का जरूरत नहीं है असुरों का मारने के लिए.
Krishna can just create one big storm and annihilate all the miscreants.
Krishna एक बहुत बड़ा वावाजोड़ा, टॉर्नेडो, वावाजोड़ा खड़ा उत्पन्न कर सकते हैं ये सब जो दुष्ट लोग हैं उनको मारने के लिए.
Krishna can just create some flood and annihilate the miscreants.
कृष्णा कोई पूर का पुर बना देते हैं बना सकते हैं ये सब दुष्ट को संहार करने के लिए
Krishna can create some famine and destroy the miscreants.
और कृष्णा महामारी बना सकते हैं ये सबको नाश करने के लिए
He doesn't need to come personally.
कृष्णा को स्वयं आने की जरूरत नहीं है
And as far as establishing religious principles, Krishna can do that very quickly. For example, he spoke Bhagavad Gita in 45 minutes. Bhagavad Gita is the essence of all dharma, all religious principles.
और जो दूसरा कारण है कि धर्म की स्थापना करने के तो भगवान वो बहुत सरलता से स्थापित कर सकते हैं जैसे कि भगवद गीता तो भगवद गीता सभी वेदों का सभी शास्त्रों का सार है और वो उन्होंने सिर्फ 45 मिनट में अर्जुन को कह दिया था
एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ इज कंटेन्ड इन द 700 वर्सेस ऑफ भगवद गीता
जो भी और सब कुछ चीज आपको आध्यात्मिक जगत को समझने के लिए आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए चाहिए वो सब कुछ चीज ये भगवद गीता के 700 श्लोक में प्रस्तुत है
दिस इज ऑल यू नीड टू परफेक्ट योर लाइफ टू अवेकन योर लव फॉर गॉड रीड भगवद गीता रेगुलरली
तो अगर आपको अपना भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है और आध्यात्मिक जीवन को संपूर्ण जानना है तो आपको ये भगवद गीता संपूर्ण जरूरत है और ये आप अगर पढ़ेंगे तो आप ये सब जान जाएंगे
Now Krishna was present on this planet 148 years.
Krishna यहाँ ये पृथ्वी पर 148 years यहाँ रहे थे
And it only took him 45 minutes to speak Bhagavad Gita.
और उन्होंने सिर्फ 45 मिनट ये भगवद गीता को बोलने में लगाया था
So, you know, to establish the principle of religion, it doesn't take him very long.
तो धर्म के सिद्धांत को प्रस्तावित करने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए उनके लिए
His main purpose in coming to this material world is to deliver his devotees from material existence.
ये भौतिक जगत में आने के लिए उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था उनके भक्तों का उद्धार करना
Because what is a devotee?
क्योंकि भक्त का अर्थ क्या है
A devotee is one who has realized his foolishness in leaving God.
डिवोटी भक्त वो है जो अपनी मूर्खता का अनुभूति करते हैं अपनी मूर्खता वो है कि वो भगवान को भूल गया है
A devotee is one who has realized the futility of material existence.
और जो भक्त होते हैं वो ये भौतिक जगत का जो प्रॉब्लम्स है दुख है वो सब समझता है
And in his heart of hearts he wants to leave this material world and go back home to Vaikuntha or to specifically to Goloka Vrindavan, the topmost planet in the spiritual world.
और जो भक्त होते हैं वो ज्यादा जितने भी जल्दी हो सके उतना ये भौतिक जगत को छोड़ के वैकुंठ में या तो टॉप मोस्ट जो ग्रह है वैकुंठ में भी सबसे उच्च ग्रह है वो है गोलोक उसमें जाना चाहता है
In other words, a devotee of the Lord is a human being who's had a change of heart.
तो भक्त वो होता है वो व्यक्ति होता है जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है
माय डियर कृष्णा फॉर सो लॉन्ग आई हैव फॉरगॉटन यू
मेरे प्रिय कृष्णा मैं बहुत लंबे अरसे से आपको भूल गया हूँ
आई हैव रियलाइज्ड माय फूलिशनेस एंड नाउ आई वांट टू गो होम प्लीज हेल्प मी
मैं अभी ये मेरी मूर्खता का अनुभव कर रहा हूँ और कृपा करके मुझे मदद कीजिए मैं अभी भगवत धाम आपके धाम आना चाहता हूँ
सो फॉर दोज पर्संस कृष्णा कम्स ऑल द वे फ्रॉम वैकुंठ टू डिलीवर देम
तो इन सभी व्यक्तियों के लिए भगवान स्वयं ये जगत में आते हैं अपने गोलोक धाम को छोड़कर
Of course, it's not that when Krishna comes to this material world, he grabs us by the back of the neck like a mother cat takes her kitten and, you know, takes us back to the spiritual world. No.
तो ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ आते हैं और जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ लेती है गले से गर्दन से ऐसे हमको उठा के नहीं ले जाते हैं
When I first became a devotee, I entered into the temple and the devotees were shaving my head and leaving a big sika.
तो जब मैं पहली बार इस्कॉन में ज्वाइन हुआ तब भक्त मेरा मुंडन कर रहे थे और मेरी ये जो शिका है छोटी उन्होंने रखी
I was new I didn't know much about Krishna consciousness.
मैं नया था मैं कृष्ण भावनामृत के बारे में जानता नहीं था ज्यादा
So I said to the devotees why do we have this tuft of hair in the back why do we have these sikas
to maine bhakton ko pucha ki jo hamare piche jo mere sar mein jo sika hai wo aap hum kyu rakhte hai iska kya karan hai
so the devotees said we keep a sika so that krishna can come to the material world and pull us back home by our sikas
to krishna kehte hain are उन्होंने डिवोटी भक्त ने बताया कि कृष्णा ये भौतिक जगत में आते हैं और भक्तों की शिखा पकड़ के उनको ये शिखा खींच के उनको अपने धाम वैकुंठ ले जाते हैं.
But it's not exactly like that.
परंतु ये ऐसा सेम नहीं है.
God helps those who help themselves.
भगवान उनको मदद करते हैं जो अपने आप को मदद करता है.
So when Krishna comes in the material world, he gives us a process by which we can follow to become purified and qualify ourselves to go back to the spiritual world.
जब भगवान ये जगत में आते हैं तो वो हमें एक ऐसी पद्धति देते हैं जिससे हमारा शुद्धिकरण हो जाए और वो शुद्धिकरण के बाद हम भगवत धाम जा सकते हैं वापस.
Just like you cannot enter the temple in an unclean state.
जैसे कि आप मंदिर में अशुद्ध अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते.
When you enter the temple of Vishnu, you enter the temple of Krishna, you have to have taken a bath, you have to have clean clothes, you leave your dirty shoes at the entrance to the temple.
तो आप जब भी कृष्ण या विष्णु के मंदिर में जाते हैं तो आपको स्नान किया होना चाहिए और अपने जो जूते हैं वो मंदिर के बाहर रखना चाहिए.
So if you want to enter the kingdom of God, you can't go there in a dirty condition.
तो अगर आपको भगवान के धाम में जाना है तो आप ये अशुद्ध अवस्था में नहीं जा सकते हैं.
That means you have to have a clean heart.
इसका मतलब है आपको अपना हृदय शुद्ध रखना चाहिए.
You have to wash the heart of all contamination that comes by associating with this material energy.
तो ये भौतिक जगत के साथ जो आपका संग हुआ है उसकी वजह से जो आपको अपवित्रता लगी हुई है उनको आपको धोना पड़ेगा.
What is a contaminated heart?
तो जो अशुद्धता हृदय में जो अशुद्धता है वो क्या है?
It means a heart that is infected with lust.
इसका मतलब है कि हृदय जो है वो हमारा कामना से दूषित हुआ है.
It means a heart that's contaminated by anger.
गुस्से की वजह से हमारा हृदय दूषित हुआ है.
It means a heart that is polluted by greed.
और लोभ की वजह से हमारा हृदय दूषित हुआ है.
Everyone in this material has within their heart lust, anger, and greed.
ये भौतिक जगत में जो भी लोग रहते हैं उन सभी के हृदय में काम, क्रोध और लोभ है.
Actually, Krishna says, lust, anger, and greed are the three gates leading to hell, not to Vaikuntha.
कृष्ण कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये जो तीन दरवाजे हैं जो हमको नरक की ओर ले जाते हैं ये हमको वैकुंठ की ओर नहीं ले जाएंगे.
So one can't be sentimental. Oh, when I die, I want to go to Vaikuntha.
तो कोई व्यक्ति भावुकता से ऐसा बोल सकता है कि ठीक है मैं जब मर जाऊंगा तब मैं वैकुंठ जाऊंगा.
No. Human life is meant for cleansing the heart. It takes 50, 60, 70, 80, 90, 100 years to cleanse the heart of lust, anger, and greed.
नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. अगर हमारे हृदय में जो काम, क्रोध और लोभ है उसको धोने में 60, 70, 80, 90 साल भी लग सकते हैं.
One has to practice spiritual life every year, every month, every week, every day, every hour, every minute, every second of his life to be qualified to go back to the kingdom of God.
व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए और भगवत धाम वापस जाने के लिए पूरे साल, पूरे महीने, पूरे दिन, पूरे घंटे, पूरे मिनट और पूरे क्षण, एक-एक क्षण आपको उपयोग करना पड़ेगा भगवत धाम जाने के लिए.
But even that's not enough.
पर फिर भी ये पूर्णता नहीं है.
It's not enough to free the heart of material desire. What's more important is you have to awaken spiritual desire within the heart. Bhakti lata bij, you have to awaken your divine love, prema for God. That is the qualification for going back to the spiritual world.
सिर्फ आपके हृदय की जो अशुद्धि है उसको दूर करना ही भगवत धाम जाने का एक योग्यता नहीं है, लेकिन आपको अपने हृदय में आध्यात्मिक इच्छाएं उत्पन्न करनी पड़ेगी. आपको भगवान के प्रति सेवा करने का भाव उत्पन्न करना पड़ेगा और ये आध्यात्मिक जो इच्छा है वही हमको भगवत धाम ले जाने के लिए हमको योग्य बनाएगा.
So when Krishna comes to the material world, he doesn't just pull us back by the sikha or our long ponytail. The ladies have the long ponytail, or in the schools, I see all the little girls have two little ponytails. They go like this to school. He doesn't just take us. He gives us a process to cleanse the heart, number one, and number two, to awaken prema bhakti, love of God, that is there in the heart. And then you can go back to Vaikuntha within one moment.
तो ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ आते हैं और हमको हमारी शिखा पकड़ के या माता जी की चोटी पकड़ के या हम देखते हैं कि स्कूल में लड़कियों की दो चोटी होती है उसको पकड़ के भगवान कृष्ण हमको ले जाएंगे. सिर्फ ऐसा नहीं है. भगवान यहाँ आते हैं, हमको एक पद्धति देते हैं और ये एक पद्धति है. और दूसरी चीज ये है कि हमारे हृदय में सुषुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम है, तो ये जागृत करने के लिए भगवान हमको पद्धति देते हैं.
That is called in Sanskrit, Cheto Dharpanam Marjanam, to cleanse the temple of the heart.
तो ये शास्त्र में वर्णन है कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हमारे हृदय को हमें सफाई करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा.
And then when the temple of the heart is clean, you can install Shri Krishna, just like we install the deity in the temple.
तो जब हमारा शुद्ध हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हम हमारे हृदय में भगवान को विराजमान कर पाएंगे जैसे कि हम मंदिर में भगवान को विराजमान करते हैं.
So that's quite a challenge.
तो ये बहुत ही बड़ा पड़कार है, चुनौती है.
It's a very daunting task. Oh no, I don't know if I can do that because I have so many material desires covering my love of God.
तो ये बहुत ही मुश्किल कार्य है क्योंकि हमें बहुत सारी भौतिक इच्छा है जो हमारे भगवत प्रेम को ढक देता है.
The contamination of our heart is there as a result not only of this lifetime but many 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 lifetimes within this material world.
तो जो हमारे हृदय में जो भी अशुद्धता है, अपवित्रता है, वो सब सिर्फ ये जन्म की नहीं है, हमारे बहुत 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 सारे पिछले जन्मों की ये सब अशुद्धता हमारे हृदय में पड़ी हुई है.
But the Lord understands this.
लेकिन भगवान ये सब जानते हैं.
And he loves his devotees.
और वो अपने भक्त को प्रेम करता है.
And therefore he gives us a process which is applicable for the age in which all of us can actually cleanse our hearts and waken our love of God before we die. He's so kind.
तो वो हमको शास्त्र देते हैं, उसमें सूचना देते हैं, आध्यात्मिक सूचना देते हैं. और वो सूचना पढ़ के हम हमारा जो भगवत प्रेम सुषुप्त अवस्था में जो भगवत प्रेम है उसको जागृत करके हम भगवत धाम जा सकते हैं.
What is the process?
वो प्रक्रिया क्या है?
हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम हलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा. In this age, the age of Kali, the age of quarrel and hypocrisy, the process is really very simple. We simply have to chant the names of God. That will cleanse the heart. That will awaken prema bhakti. Just by chanting Krishna's name.
ये कला और दम से भरा हुआ ये कलयुग है. तो ये कलयुग में हरे नाम हरे नाम एव केवलम, सिर्फ भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करना, ये एक ही ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम और कोई उपाय नहीं है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है आत्म साक्षात्कार के लिए.
Why is it so potent?
क्यों ये बहुत ही शक्तिशाली है?
Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha, because Krishna is present in the sound of his name. Chanting Hare Krishna is the sound incarnation of God.
क्यों ये नाम में इतना शक्ति है? क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने नाम में भर दी है. भगवान का नाम स्वयं भगवान है और इसीलिए वो इतना शक्तिशाली है नाम.
There's no difference between God and God's name.
भगवान और भगवान के नाम के बीच में कोई अंतर नहीं है.
Now everyone will accept that God is all powerful.
सभी व्यक्ति भगवान को शक्तिशाली मानते हैं.
And we generally think of his power as, you know, manifested in creating this world, maintaining this world, destroying this world. Only God can do that because he's so powerful.
सब लोग जानते हैं कि भगवान बहुत ही शक्तिशाली है इस जगत को उत्पन्न करने के लिए, उसका पालन करने के लिए और उसको विनाश करने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत है. और भगवान इतने शक्तिशाली के हैं कि वो ही सिर्फ इतना कर सकते हैं.
And that's true.
और ये सही है.
But also he's so kind that all that power is present in the sound of his name, Hare Krishna.
ये सच है. और इतनी जो शक्ति है, सभी शक्ति भगवान ने अपने नाम में भर दिए. पूरी शक्ति भगवान के नाम में है और वो नाम है हरे कृष्णा.
Just as the sun can purify any contaminated place, like in India, to purify a woolen garment or a linen or anything like this, we put it in the sun and it purifies that garment.
तो जो सूर्य होता है वो सभी चीज को पवित्र कर देते हैं. जैसे कि इंडिया में भारत में जो वूल होता है ऊन होता है और लिनन जो होते हैं वो कपड़ा अगर दूषित होता है तो हम सूर्य प्रकाश में रख देते हैं और सूर्य की किरण से वो सब शुद्ध हो जाते हैं.
Well, the sun can purify a contaminated tank of water by eventually evaporating it.
तो जो दूषित पानी होता है वो सूर्य उसकी बाष्प से उसकी गर्मी से वो बाष्प भवन करके वो पानी को शुद्ध कर सकते हैं.
Well, the sun destroys all darkness by rising in the morning.
और सूर्य पूरे अंधकार को मिटा सकते हैं सुबह उदित होकर.
So in the same way, Krishna's holy name, which is like the sun, can purify the most contaminated heart.
तो कृष्ण का नाम भी ऐसा ही है सूर्य के जैसे है जो कि जो हमारा सबसे ज्यादा दूषित हृदय है उसको शुद्ध कर सकते हैं.
And awaken our love for him, for God.
और हमारा भगवान के लिए जो सुषुप्त हुआ प्रेम है वो उत्पन्न कर सकते हैं.
So our spiritual master, he concluded after giving such a talk, what intelligent man and woman would not chant Hare Krishna after hearing this sublime philosophy?
तो हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति में क्या बुद्धि है अगर अगर वो व्यक्ति इतना अच्छा तत्व ज्ञान सुनकर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे भगवान का नाम नहीं लेंगे.
What is the source of all our suffering in this world? Lust, anger and greed, that's why we suffer. But if you chant, it goes away. So who wouldn't chant? Why not chant? Do you want to stay in a suffering condition?
तो हम ये भौतिक जगत में जो भी दुख भुगत रहे हैं वो काम क्रोध और लोभ की वजह से है और ये तीन चीज की वजह से हम यहाँ दुख भुगत रहे हैं. तो अगर हम कृष्ण का नाम लेंगे और ये पूरा जो हमारा गंध के काम क्रोध लोभ सब दूर चले जाएंगे तो इतना सरल है फिर भी हम लोग क्यों जप नहीं करते हैं भगवान का नाम क्यों हम नहीं लेंगे.
Only a mad person gets a headache and goes, oh, I wish this headache will last forever. What? Are you crazy? Pagal.
एक पागल आदमी होता है उसको सर में दर्द होता है तो वो बोलेगा कि ओ मेरे सर में दर्द है अभी ये सर का दर्द कभी भी गायब नहीं हो सकेगा कभी भी दूर नहीं होगा. नहीं ये दूर होगा इसको भगा सकते हम.
Oh mommy, I have a toothache. That's all right, son. Just keep that toothache as long as you can. What is that? That's madness.
और एक लड़का कहते हैं मम्मी मेरे दांत में दर्द है तो मम्मी बोलेगी ठीक है जब तक तुम्हारा दांत है वो दर्द रहेगा. अरे ऐसा कैसे होगा इतना लंबा थोड़ी दर्द रहेगा.
The natural reaction is as soon as we're suffering we want to stop the suffering and become healthy again.
तो जैसे ही हमारा दर्द होता है तो दर्द खत्म होता है तो वैसे ही हम वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं.
So here's the ultimate solution to all problems of materialism, all kinds of suffering. That's called panacea. Panacea means that the one thing that cures everything, by chanting Hare Krishna, you cleanse the heart of all unwanted things, you awaken your prema bhakti, and at death, you go to Goloka, where you live an eternal life of bliss and knowledge with Krishna. Who would not accept such a proposition? Who wants to stay in the material world with a toothache and a headache?
तो ये कृष्णा का नाम है वो एक ऐसी उत्तम दवा है जिसको पेनिसिला बोलते हैं पेनिसिला कि वो दवा पूरा एक ही साथ बहुत सारे हमारी तकलीफ दूर कर सकते हैं. तो कृष्णा नाम एक ऐसा है जो हमारे हृदय की गंदगी को दूर करता है हमारे सुषुप्त अवस्था में जो कृष्ण प्रेम है उसको उदित करता है वापस जागृत करता है पुनः जागृत करता है और हमारे जो भौतिक जगत में जितने भी दुख है वो सब दूर करता है और हमें भगवत धाम ले जाता है. तो कौन अपने सर दर्द और अपने ये बाकी के दर्द के साथ ये भौतिक जगत में जीना चाहता है.
Of course, someone can doubt, how do I know it's really true?
तो किसी को एक शंका हो सकती है क्या आप जो बोलते हैं वो सही है या गलत है हम कैसे जान सकते हैं.
How do we know it's true? Because Bhagavan Shri Krishna says so. He's the ultimate authority. You can't doubt God.
क्यों ये सच्चा है क्योंकि ये भगवान ने कहा है और भगवान एक अंतिम सत्ता है और आप भगवान की शंका नहीं कर सकते.
In the Bhagavad Gita, Krishna says, the sacrifices, I am the chanting of the holy names.
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना.
And when Krishna came as Lord Chaitanya in the Kali Yuga 500 years ago, he reinforced that.
Or
by quoting that verse from Brihad Narayan Purana, Nashteva, Nashteva, Nashteva. There's no other way. There's no other way. There's no. So don't doubt the authority of God.
तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए तब उन्होंने ये वर्ष को भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन को ये युग धर्म की पद्धति हमको बताया और उन्होंने बताया कि नास्तेव नास्तेव इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है. ये हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन के अलावा और कोई उपाय नहीं है. आप बिल्कुल शंका मत करो.
And this chanting is so nice. You don't have to wait for perfection to enjoy it. It's so nice because Krishna's Rama, the source of all, reservoir of all pleasure, even from the first moment, the first hour, the first day you chant Hare Krishna, you're tasting transcendental bliss.
तो ये कृष्णा और राम का नाम इतना सुमधुर है कि आप पहले ही दिन से जैसे ही आप जप करना शुरू करेंगे कीर्तन करना शुरू करेंगे उसी दिन से आपको इसका रसास्वाद का अनुभव होगा. ये ऐसा नहीं कि इसको पूर्ण करने के लिए हमको राह देखनी पड़ेगी.
Just like when you eat some nice sandesh, or let us say, what is that sweet you have here in the beginning of the meal?
Shrikhand.
Shrikhand. You have some Shrikhand. Everyone in Gujarat likes Shrikhand.
तो एक उदाहरण देता हूँ. समझिए कि अगर आपको श्रीखंड आपको एक ऐसी स्वीट डिश खाने को मिले जैसा कि गुजरात में सब लोगों को श्रीखंड अच्छा लगता है तो आप श्रीखंड खाने को मिले.
The first bite of Shrikhand is very nice.
तो जैसे ही पहला आप श्रीखंड का मुंह में डालेंगे पहला ही तो आपको बहुत अच्छा लगेगा.
The second bite of Shrikhand is very nice.
दूसरा भी मुंह में ये भरेंगे खाएंगे आप तो वो भी अच्छा लगेगा.
And the last bite of Shrikhand is very nice.
और जो अंतिम जो आप ये करेंगे खाएंगे श्रीखंड वो भी बहुत अच्छा है.
So by Krishna's mercy, this process of chanting His name, Hare Krishna mantra, it's very nice in the beginning, it gets better in the middle, and it's pure ecstasy as you continue chanting forever.
तो ये कृष्ण का नाम है वो भी बहुत सुमधुर है. भगवान की कृपा से कृष्ण के नाम शुरुआत में हमें बहुत अच्छा लगेगा और जैसे ही हम आगे प्रगति करेंगे तो उसका स्वाद हमको अच्छा ही बढ़ता ही जाएगा और अंत में हमें इतना उच्च स्वाद मिलेगा और वो स्वाद से हम भगवत धाम जा सकते हैं.
So those of you who are here and are not chanting, have not practiced or experienced, start chanting tonight.
तो जो यहाँ बैठे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं तो आज से ही आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कीजिए.
Not because I say so, because I'm just a stranger. I'm just a stranger. I'm a foreigner. You don't have to take my word for it, but you take Krishna's word for it. He's God. He's your God. He's your Ishtadeva. You should listen to him.
आपको इसलिए नहीं करना है कि मैं कह रहा हूँ. मैं तो एक अनजान आदमी हूँ. मैं तो एक विदेशी आदमी हूँ. मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप मत लीजिए. लेकिन ये कृष्ण बोल रहे हैं. कृष्ण आपके भगवान है आपके इष्ट देव है इसीलिए आपको कृष्ण का नाम लेना चाहिए.
If your father tells you something, you have to listen. So a supreme father says something, you must listen.
अगर आपके पिता बोलते हैं तो आप सुनते हैं कि नहीं. ऐसे ही परम पिता हमारे बोलते हैं कृष्णा तो हमें ये सुनना चाहिए.
So with a blade of grass between our teeth and our hands folded in pranam, we beg those of you who are just coming for the first or second time, please start chanting Hare Krishna. Free yourself from suffering, become happy, and go home to the spiritual world.
मुंह में घास का तिनका लेकर और दोनों हाथ जोड़ के मैं सबसे निवेदन करता हूँ जो पहली या दूसरी बार आए हैं और जो जप नहीं करते हैं तो कृपा करके आप जप शुरू कीजिए. हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कीजिए.
And those of you who are chanting, those of you who are Vaishnavas and Vaishnavis, you keep chanting more and more and more until Cheto Darpan and Marjanam, your heart is completely cleansed and tears are flowing from your eyes like torrents of rain out of love for Krishna when you chant. Keep chanting till you get to that point.
So, यहाँ जो भी वैष्णव वैष्णवी जप कर रहे हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप अपने जब चालू रखिए तब तक चालू कर रखिए जब तक आपकी आंखों में से अश्रु की धारा नहीं बहे आपके हृदय का पूरा मार्जन नहीं हो तब तक आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब चालू रखिए.
And like the Lord, who out of compassion came to this world and delivered you, you also share this chanting with the rest of the world, which is also steeped in suffering, and make their lives better as well.
तो आपको जब सिर्फ अपने लिए नहीं करना है कि आपको भगवान लेने आएंगे तब तक नहीं करना है, लेकिन आपको जब उन जीवात्मा के लिए करना है, वो ये भौतिक जगत में जो सड़ रहे हैं, दुख भुगत रहे हैं, उनको भी भगवत धाम जाने में मदद करने के लिए आपको जप करना है।
Because Shastra says, anyone who is born in Bharat, anyone who has the pious birth of being born in India, they must perfect their own lives by becoming Krishna conscious, and they must deliver others from the bondage of material existence by sharing their good fortune with others.
क्योंकि शास्त्र में कहा है कि जो भी व्यक्ति का जन्म भारत भूमि में हुआ है उनको पहले अपना खुद का उद्धार करना चाहिए और करना है और उसके बाद उनको पूरे विश्व में प्रचार करके सभी लोगों का उद्धार करना है.
India has a great responsibility to liberate the world from bondage by sharing their great spiritual culture with the whole world.
भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे जगत का उद्धार करने के लिए. वो जगत का कैसे उद्धार करना है? भारत के पास ऐसा आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक शास्त्र है, जिसमें से वो प्रचार करके पूरे विश्व के लोगों का उद्धार कर सकते हैं.
धन्यवाद. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच.
हरे कृष्णा.
प्लीज अप्लॉड माय ट्रांसलेटर. ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब ट्रांसलेट. ऑलराइट
भाई महाराज मर्सी.
So many of you are speaking English. So now we're going to celebrate by chanting Hare Krishna. Our last kirtan of the tour here in Gujarat. So you please chant. And we'd like all the children to come in front. Give them some extra space today. They can all come and chant. The children can come in front and chant with us.
So now this is our Gujarat ka antim kirtan. Hai. इसके बाद भी प्रोग्राम है वैसे, लेकिन अभी जो कीर्तन होगा अंतिम है. और यहाँ सब लोग आप जब कीर्तन कीजिए और बच्चे को आगे जगह दीजिए ताकि बच्चे यहाँ आकर नृत्य कर सकें. हरे कृष्ण.